95वीं कारिका है, अविकारस्य शब्दस्य निमित्तेर विकृतो ध्वनिः उपलब्धौ निमित्तत्वम् उपयाति प्रकाशवत्। आप जानते हैं कि शब्द नित्य है और उसका प्रकाशक ध्वनि है, इसी बात को इस कारिका में भी बताया गया है। इससे पहले जातिवादियों ने ये जो कहा था कि जाति अनेक व्यक्ति भी व्यंग्या जाति स्मृता कुछ इस तरह से था, जाति स्फुटित स्मृता, कि हम जाति मान करके और जाति ये जो है ना स्फुट मानने की ज़रूरत नहीं है और जाति जो है वह नित्य होती है। तो उस बात का जो है ना एक तरह से खंडन करते हुए और अपना जो सिद्धांत था व्याकरणों का कि पदेन वर्णा विद्यन्ते वर्णेषु अवयवा न च वाक्यात् पदानाम अत्यंतम प्रविवेको न कश्चन, इस सिद्धांत का जो है ना कि परिपुष्टि इस कारिका के द्वारा की जा रही है। कहते हैं कि निमित्तैः विकृतः ध्वनिः अविकारस्य शब्दस्य उपलब्धौ प्रकाशवत् निमित्तत्वम् उपयाति, ये इस कारिका का अन्वय होगा, आसान ही है। निमित्तैः जो निमित्तैः का मतलब हुआ कारण, किसका कारण, तो उच्चारण का कारण। तो उच्चारण का कारण क्या होता है, वर्णोच्चारण का कारण, तो उच्चारण स्थान है, प्रयत्न है, तो इन सबों के द्वारा यही यहाँ पर निमित्त है। स्थान प्रयत्नादि भी ही निमित्तैः, स्थान प्रयत्न आदि निमित्तों के द्वारा विकृतः ध्वनि ही, विकृतः माने उत्पन्नः, तो स्थान प्रयत्न आदि के द्वारा जो विकृत ध्वनि है अर्थात उत्पन्न ध्वनि है वह ध्वनि अविकारस्य शब्दस्य, जो अविकार शब्द है, अविकार यहाँ पर अर्थ करेंगे नित्य, तो जो अविकार शब्द है अर्थात नित्य शब्द है, तस्य उपलब्धो, उस नित्य शब्द की उपलब्धि में प्रकाशवत माने प्रकाश की तरह निमित्तत्वम उपयाति, निमित्त बनता है, कौन निमित्त बनता है, तो ध्वनि निमित्त बनता है, माने नित्य शब्द की जो उपलब्धि होती है, नित्य शब्द का जो प्रकाशन होता है, नित्य शब्द की जो अभिव्यक्ति होती है, उसमें ध्वनि कारण बनती है। किस तरह से, तो जिस तरह से अंधेरे में रखे हुए घट का प्रकाशन जो है वह प्रकाश करता है, उसी तरह से स्फोट रूपी जो नित्य शब्द है उसका प्रकाशन ध्वनि किया करती है। अब आगे 96वीं कारिका को देखें। न च अनित्येषु अभिव्यक्तिर नियमेन व्यवस्थिता आश्रयरपि नित्यानां जातीनां व्यक्तिरिष्यते, यहाँ एक शंका होती है कि अनित्य जो घट आदि है उसका जो है प्रदीप आदि जो है आलोक प्रकाश वह अभिव्यक्ति कराता है, तो प्रकाश के द्वारा अनित्य घटपटादि का की जो है अभिव्यक्ति होती है। आपने अभी अभी ये कहा कि प्रकाश की तरह जो है ध्वनि स्फोट का की अभिव्यंजिका है, स्फोट की अभिव्यक्ति करती है, तो जैसे प्रदीप आदि जो है वह अनित्य घटादि का प्रकाशन करता है, उसी तरह से हमें ये मानना चाहिए कि ध्वनि भी जो है वो अनित्य शब्द का ही प्रकाशन करती है। और इस तरह से एक अनुमान हो जाएगा कि शब्दो नित्यः अभिव्यंग्यत्वात् घटादिवत्, माने शब्द जो है वह अनित्य होता है क्योंकि वह शब्द अभिव्यंग्य है, अभिव्यंग्य है मतलब प्रकाश्य है, प्रकाशनीय है, किस तरह से, तो घटादिवत घटादि की तरह, तो इस अनुमान से शब्द में अनित्यता सिद्ध होती है, शब्द में नित्यता सिद्ध नहीं हो पाती। इसी शंका का अपनोदन करने के लिए इस कारिका में कहा कि न च अनित्येषु अभिव्यक्ति ही नियमेन व्यवस्थिता, नियमेन माने निश्चित रूपेण अनित्य पदार्थ की ही अभिव्यक्ति होती है, यह व्यवस्था नहीं है। तात्पर्य ये है कि अभिव्यक्ति केवल अनित्य की ही नहीं होती है अपितु नित्य की भी अभिव्यक्ति हुआ करती है। आपने अभिव्यक्ति के आधार पर जो है ये जो कहा कि चूंकि शब्द की अभिव्यक्ति होती है ध्वनि के द्वारा, इसलिए अभिव्यक्ति होने के कारण शब्द अनित्य है, ये बात तब सही होगी जबकि व्यवस्थित रूप से माने सिद्धांत रूप से या कह लीजिए हर जगह केवल अनित्य की ही अभिव्यक्ति होती हो, नित्य की अभिव्यक्ति न होती हो, तब तो आप अभिव्यक्ति के आधार पर कह सकते हैं कि ध्वनि से अभिव्यक्ति होने के कारण शब्द नित्य होता, शब्द अनित्य होता। लेकिन ऐसा नहीं है, वही कहा कि न च अनित्येषु अभिव्यक्ति नियमेन व्यवस्थिता, माने अनित्य पदार्थ की अभिव्यक्ति होती है ये नियमेन व्यवस्थित नहीं है, माने इसमें जो है ना कोई नियम नहीं है कि ऐसा ही हो। आश्रयरपि नित्यानाम जातीनाम व्यक्तिरिष्यते, नित्य जो जाति है उसकी भी अभिव्यक्ति होती है किसके द्वारा, आश्रय के द्वारा। आश्रय यहाँ पर क्या है, व्यक्ति, कि व्यक्तियों के द्वारा नित्य जाति की जो है अभिव्यक्ति होती है और इस चीज को सब लोग मानते हैं। अब जैसे नाना गो व्यक्ति को देखने से गोत्व जाति की अभिव्यक्ति होती है, तो यहाँ पर क्या हुआ, आश्रय जो व्यक्ति है उस व्यक्ति से नित्य जाति की अभिव्यक्ति हुई है। तो ये अभिव्यक्ति होना दोनों ही स्थिति में है, अनित्य पदार्थों की भी अभिव्यक्ति होती है और नित्य पदार्थों की भी अभिव्यक्ति होती है। अनित्य पदार्थ की अभिव्यक्ति का उदाहरण आपने देखा, जैसे प्रदीप आदि जो है वह अनित्य घटपट आदि की अभिव्यक्ति करता है, किंतु और नित्य पदार्थ में जैसे जाति जो है वह नित्य पदार्थ है, इसको सब लोग मानते हैं, तो नित्य जाति पदार्थ की अभिव्यक्ति जो है वह आश्रय के द्वारा होती है अर्थात व्यक्ति के द्वारा होती है। तो ये जरूरी नहीं है कि जिसकी अभिव्यक्ति हो वो अनित्य ही हो, बल्कि नित्य की भी जो है अभिव्यक्ति होती है। ये दर्शन की भाषा में एक व्यभिचार शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो जहाँ पर व्यभिचार हेतु का व्यभिचार होता है वहाँ पर अनुमान जो है मान्य नहीं होता। व्यभिचार का मतलब ये है कि हेतु तो रहे लेकिन साध्य न रहे, मतलब इसको कहते हैं हेतु का व्यभिचार। तो यहाँ पर जो है ना शब्दों नित्य अभिव्यंग्यत्वात् घटादिवत में अभिव्यंग्यत्व जो है वह हेतु है, यह अभिव्यंग्यत्व जहाँ जहाँ हो वहाँ वहाँ अनित्य हो तो वहाँ पर व्यभिचार का अभाव होगा, किंतु कहीं अभिव्यंग्यत्व हो और वहाँ पर अनित्यत्व न हो तो वह हेतु का व्यभिचार माना जाता है, और जहाँ पर हेतु व्यभिचारी हो वहाँ पर अनुमान जो है ना अनुमान को प्रामाणिक नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए आप कि जाति अभिव्यंग्य है, जाति में अभिव्यंग्यत्व हेतु है, किंतु उसमें साध्य जो है अनित्यत्व वह नहीं होता, जाति तो अनित्य नहीं है ना, जाति तो नित्य है। इस तरह से अभिव्यंग्यत्व रूप हेतु है शब्द में, किंतु साध्य जो है अनित्यत्व वह नहीं है, इस तरह से हेतु व्यभिचारी हो जाता है। यहाँ पर अभिव्यंग्यत्व व्यभिचारी है और जहाँ पर हेतु व्यभिचारी हो वहाँ पर का अनुमान जो है वह प्रामाणिक नहीं होता है। तो वही व्यभिचार जो है ना यहाँ पर इन्होंने दिखाया, आश्रयरपि नित्यानाम जातीनाम व्यक्तिरिष्यते। व्यभिचार का फिर से अर्थ एक बार बता दूं कि हेतु रहे मगर साध्य न रहे तो वहाँ पर हेतु को व्यभिचारी हेतु माना जाता है, और जहाँ पर हेतु व्यभिचारी होगा वहाँ का अनुमान मान्य नहीं होगा। तो यहाँ हेतु क्या था, अभिव्यंग्यत्व, और साध्य क्या था, अनित्यत्व। इस तरह से हम इस कारिका को पढ़ करके फिर 97वीं कारिका को देखेंगे। देशादिभिश्च संबंधो दृष्टः कायवतामिह देश भेद विकल्पेपि न भेदो ध्वनि शब्दयोः। अब यहाँ प्रश्न ये किया जा रहा है कि किसी अन्य गृह में दिया है, दीपक है, और किसी दूसरे घर में, दूसरे गृह में जो है घट है। तो एक घर में जो है दिया है और दूसरे घर में जो है दीपक है, तो जैसे गेहांतर स्थित, गेहांतर समझते हैं ना, वही अन्य गेह, गेह माने घर, तो अन्य घर में स्थित दिए से अन्य घर में स्थित घट की अभिव्यक्ति नहीं होती है। उसी तरह से ये जो ध्वनि और शब्द है ये दोनों अलग अलग जगह रहने वाली चीज है। ध्वनि रहती है श्रोत्रेंद्रिय में और शब्द रहता है हृदय में। तो एक श्रोत्र देश हो गया ध्वनि का, श्रोत्र देश मतलब श्रोत्रेंद्रिय देश, देश माने स्थान। तो श्रोत्रेंद्रिय में ध्वनि रहती है और हृदय देश में क्या रहता है, तो स्फोट रहता है, शब्द रहता है। तो जैसे एक माने अन्य घर में रहने वाला दीपक अन्य घर में रहने वाले घटपटादि का जो है प्रकाशक नहीं होता, उसी तरह से अन्य देश में माने श्रोत्र देश में रहने वाली जो ध्वनि है, वह ध्वनि अन्य देश में माने हृदय देश में रहने वाले शब्द का प्रकाशक नहीं होना चाहिए। ये शंका कर रहे हैं। इस शंका का समाधान एक शब्द में अगर आप जानना चाहें तो ये है, ताकि ये जो नियम है कि अन्यत्र रहने वाली चीज अन्यत्र रहने वाली चीज का प्रकाशक नहीं होता, ये मतलब जो मूर्त द्रव्य है उस मूर्त द्रव्य में ये जो है ना, ये बात मतलब बिल्कुल फिट बैठती है, और जो अमूर्त द्रव्य है उसमें ये बात फिट नहीं बैठती है। तो ये जो दीपक है और घटपटादि जो है ये मूर्त है, तो मूर्त के लिए तो एक ही जगह दोनों का रहना जरूरी है, प्रकाश्य और प्रकाशक का। अगर अन्यत्र प्रकाश्य है और अन्यत्र प्रकाशक है तो वहां पर जो है प्रकाशन नहीं होगा। ये है केवल मूर्त द्रव्य के लिए, लेकिन अमूर्त द्रव्य में ऐसा नियम नहीं है। अमूर्त द्रव्य में क्या होता है कि देश कोई भी हो, स्थान कोई भी हो, अन्यत्र रह करके भी अन्यत्र वाले का जो है प्रकाशन संभव है। तो यहाँ शब्द और ध्वनि जो है ये दोनों अमूर्त है, इसका कोई आकार प्रकार नहीं होता। इसलिए अमूर्त आप जानते ही हैं, जिसमें मूर्ति न हो, मूर्त मतलब आकार प्रकार, जिसका आकार प्रकार न हो उसको हम अमूर्त कहते हैं। तो ध्वनि और शब्द जो है वह अमूर्त है, और अमूर्त होने के कारण हम अन्यत्र रहने पर भी जो है ध्वनि शब्द का प्रकाशक बन जाएगी। अब कारिका को देखिए, देशादिभिश्च संबंधो दृष्टः काय बताम। यह काय बताम, काय कहते हैं शरीर को, और काय बताम माने शरीर युक्ता नाम अर्थात मूर्ता नाम। तो मूर्त काय बताम माने मूर्ता नाम द्रव्या नाम, मूर्त जो द्रव्य है उसमें देशादिभिः संबंध दृष्टः, उसमें जो है ना देश काल आदि का संबंध जो है ना देखा जाता है। अर्थात जिस काल में जिस देश में प्रकाशक होगा, उसी काल में उसी देश में जो है उस वस्तु का प्रकाशन किया जाएगा। ये किसके लिए नियम है, काय बताम माने मूर्त द्रव्यानाम अयम नियमः। देश भेद विकल्पे भी, यहाँ विकल्प का अर्थ कर लीजिए स्वीकारे भी, तो देश भेद स्वीकारे भी नौ भेदो ध्वनि शब्दयो हो। और ध्वनि शब्द ये दोनों जो है ये कायवान नहीं है, ये जो है ना आकार प्रकार से युक्त नहीं है, ये अमूर्त है। और अमूर्त जो होता है उसमें देश भेद स्वीकार करने पर भी माने अलग अलग देश मानने पर भी, अलग अलग देश मानना क्या है यहाँ पर, ध्वनि का हमने मान लिया श्रोत्र देश और शब्द का मान लिया हमने हृदय देश। तो अलग अलग देश विकल्प होने पर भी, स्वीकार होने पर भी नौ भेद है, ध्वनि और शब्द में जो है ना कोई भेद नहीं होगा। भेद नहीं होगा का तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं होगा कि वहां पर प्रकाश प्रकाशक भाव नहीं होगा। ध्वनि जो है वह प्रकाशक बनेगी ही बनेगी, शब्द जो है वह प्रकाश बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पर दो तीन बातें जो है आपको समझना चाहिए कि शब्द और ध्वनि जो है अमूर्त है, इसलिए इसमें देश भेद होने पर भी, अलग अलग देश होने पर भी जो है प्रकाश प्रकाशक भाव बन जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपने ये कहा कि हृदय में शब्द रहता है और श्रोत्र में जो है ध्वनि रहती है, तो दोनों का क्या एक देश नहीं है, एक स्थान नहीं है, तो प्रकाश प्रकाशक भाव नहीं होगा। इस बात को हम दूसरे टाइप से भी उत्तर दे सकते हैं कि दोनों ही देश ही है, माने श्रोत्र देश और हृदय देश, और दोनों में आकाश है, उसको कहते हैं श्रोत्र आकाश और हृदय आकाश। तो श्रोत्राकाश हो अथवा हृदयाकाश हो, दोनों तो आकाश ही है, तो आकाश रूप एक स्थान होने के कारण दोनों में प्रकाश प्रकाशक भाव बन जाएगा। ये दूसरा उत्तर है। पहला उत्तर तो ये था कि शब्द और ध्वनि जो है अमूर्त है, और अमूर्त में देश भिन्नता रहने पर भी जो है प्रकाश प्रकाशक भाव होता है। है। दूसरा उत्तर हम इस तरह से भी दे सकते हैं कि हृदय देश जो है वह हो गया हृदयाकाश और श्रोत्र देश जो हुआ वह हो गया श्रोत्राकाश। दोनों में आकाशत्व तो है, दोनों में आकाश है और आकाश रूप एक देश होने के कारण दोनों में प्रकाश प्रकाशक भाव हो जाएगा। और तीसरा टाइप भी इसका उत्तर दिया जा सकता है तीसरे ढंग से कि ऐसा है कि ध्वनि स्रोत्र देश से होते हुए हृदय देश में पहुंच जाती है और स्रोत्र देश ध्वनि स्रोत्र देश से होते हुए हृदय देश में पहुंच करके जो है ना स्फोट का अभिव्यंजन कर देगी। तो इस तरह से जब हृदय देश में ध्वनि भी पहुंच गई और वहां पर स्फोट पहले से है ही तो दोनों का एक देश हो गया, एक ही स्थान हो गया और एक स्थान होने के कारण परस्पर व्यंग व्यंजक भाव हो जाएगा। तो ये जो प्रश्न किया था कि एक काल में एक देश में ही जो है प्रकाश प्रकाशक भाव होता है, उसका तीन प्रकार से जो है ना हम उत्तर दे सकते हैं। एक तो शब्द और ध्वनि अमूर्त है इसलिए ये नियम लागू नहीं होगा। दूसरा कि हृदय देश हो या श्रोत्र देश हो, दोनों में आकाशत्व है, हृदयाकाश और श्रोत्राकाश, तो आकाश रूप होने के कारण श्रोत्र और हृदय को दोनों में आकाशत्व है, तो एक ही आकाश देश हुआ दोनों का, अलग अलग देश नहीं हुआ। इस तरह से प्रकाश प्रकाशक भाव बन जाएगा। और तीसरा उत्तर हुआ कि ध्वनि जो है श्रोत्रेंद्रिय के माध्यम से हृदय देश तक पहुंच जाती है और वहीं पर स्फुट भी रहता है, तो वहां एक ही जगह दोनों के रहने के कारण दोनों में प्रकाश प्रकाशक भाव बन जाएगा। इसमें संदेह के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इस तरह से आज का पाठ हम यहीं पर स्थगित करते हैं।